फ्रांसीसी युग 1635 से 48 यह रिसिल्यू की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। यह ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग की शक्ति के साथ साथ स्पेन की शक्ति को भी कुचलना चाहता था। उसके हस्तक्षेप से हैब्सबर्ग की सेनाओं को सीधी विजय न मिल सकी और स्पेन तथा ऑस्ट्रिया दोनों ही इतना थक गए कि फ्रांस का विरोध करने की स्थिति में नहीं रह गए। यद्यपि वेस्टफेलिया की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति 1648 से 6 वर्ष पूर्व 1642 में रिसिल्यू की मृत्यु हो गई, किंतु फिर भी उसे संतोष था कि उसकी नीति सफल हो रही थी। जहां तक फ्रांस का प्रश्न था, वेस्टफेलिया की संधि द्वारा फ्रांस एवं फ्रांसीसी राजा दोनों की ही शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। रिसिल्यू की मृत्यु के बाद अगले राजा लुई 14वें की अल्प वयस्कता के समय कार्डिनल मजारिन ने 1661 तक फ्रांस का कार्यभार संभाला। वह जन्म से इतालवी था जो फ्रांस में आकर बस गया था। उसने रिसिल्यू की नीतियों को जारी रखा और क्रोध या जन विरोध के बावजूद लुई के निरंकुश राजतंत्र को दृढ़ किया। पोद फार्लेमा के मामलों में मजारिन के हस्तक्षेप के विरुद्ध होने वाला एक जन विरोध था। फार्लेमा का यह फर्ज समझा जाता था कि वह राजा के कानूनों एवं आदेशों का पंजीकरण करे। इस फार्लेमा ने मजारिन का विरोध करते हुए एक कानून का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया और अन्य कई कानूनों को अवैध घोषित कर दिया। मजारिन ने जर्मनी से फ्रांसीसी सेना के लौटने पर इस विरोध को दबा दिया और पुराने कानूनों को फिर मान्यता दिलवा दी। क्रोध के कारण फ्रांसीसी कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा और गिर गई। राजनीतिक एवं वित्तीय मामलों में पार्लेमा के हस्तक्षेप का अधिकार छीन लिया गया। पेरिस में हथियार छीन लिए गए एवं राजकीय शक्ति पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई। रिसिल्यू एवं मजारिन के कार्यों ने ही लुई 14वें के निरंकुश राजतंत्र को संभव बनाया, जो यूरोप में उस राजकीय शासन व्यवस्था का प्रतीक बन गया जो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ तक चली।